हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा। तो हम बहुत ही सुंदर और रमणीक स्थान पे आए हैं। इसका नाम है पेठा गांव, यानी कि प्रविष्ट वन, उसका संस्कृत नाम है। और पूरे क्षेत्र का नाम है परम रासस्थली, उसको आज कहते हैं पारासोली, लेकिन उसका मूल नाम है परम रासस्थली, जहाँ पर भगवान ने वसंत ऋतु में रास रचाया था। और प्रविष्ट वन इसलिए कहा गया है क्योंकि जहाँ पर भगवान खड़े थे, समझो भगवान ऐसे खड़े हैं, आपको देख रहे हैं, भगवान के लेफ्ट साइड में वो प्रविष्ट गुफा थी जिसके अंदर भगवान जाकर उन्होंने गिरिराज को उठाया था। वो भी इसका अगर आपको ठीक से समझना है तो आप दूर देखेंगे ना, दूर एकदम, वो गिरिराज पर्वत है। अगर आपके दृष्टि में इतनी ताकत है तो आपको नजर आएगा गिरिराज पर्वत। वो गिरिराज पर्वत इतना विशाल था, वो यहां तक था, लेकिन जैसे वो ऐसा है ना ट्रायंगुलर, ऐसे जब नीचे जा रहे हैं तो ऐसे जाएगा नीचे, तो यहां पर भूमि तैयार होगी ना। अभी ऐसा है, वो यहां तक पर्वत है, नीचे जाएगा तो जमीन तो ये रहेगी, तो जमीन जो है वो तैयार हो जाएगी ना वहाँ पर। तो वैसे पर्वत जैसे धस रहा है नीचे नीचे थोड़ा थोड़ा, तो अभी एक्चुअली हम पर्वत के ऊपर ही बैठे हुए हैं, इफ़ यू सी दैट वे, है ना। जमीन के अंदर तो पर्वत है लेकिन धस धस के फिर वो अभी लगता है दूर है, लेकिन उस समय जब था तो ये गुफा और पर्वत एक ही जगह पे था। तो भगवान उस गुफा के अंदर चले गए और उन्हें गिरिराज को उठाया, प्रवेश किया उन्होंने, इसलिए नाम क्या है प्रविष्ट गुफा। तो वो ये कथा है यहाँ की। बिफोर आई फॉरगेट आई विल टेल वन स्टोरी बिकॉज आई मे फॉरगेट दिस स्टोरी। वो कागज दो, किधर गए वो कागज लाओ। जो अष्ट छाप है उनके नाम मैंने लिखे हैं, आठ भगवान के सखा जो श्रीनाथ जी के साथ भगवान के साथ में खेलते थे, कभी विग्रह रूप में, विग्रह के साथ खेलते थे, कभी प्रत्यक्ष रूप में खेलते थे। तो उसमें से जो आठ है उसमें से चार और चार, ऐसे उनके विभाजन है, और चार जो है वो महाप्रभु वल्लभाचार्य के शिष्य हैं, और दूसरे चार जो है महाप्रभु जी के पुत्र जो थे, महाप्रभु वल्लभाचार्य के पुत्र विट्ठलनाथ गोस्वामी, सो गोसाई जी कहते हैं यहाँ पर, उनके शिष्य हैं। तो चार और चार मिलकर आठ होते हैं। तो महाप्रभु वल्लभाचार्य के जो शिष्य हैं वो सबसे पहले सूरदास जी हैं, उसके बाद कुंभन दास जी हैं, उसके बाद परमानंद दास, उसके बाद कृष्णदास। इनकी हर एक व्यक्ति की अद्भुत अद्भुत कथाएं हैं, अद्भुत मतलब तो चमत्कारी कथाएं हैं। और विट्ठलनाथ गोस्वामी जो हैं वो दो भाई थे, गोकुलनाथ जी और विट्ठलनाथ जी, दोनों एक्चुअल उनके पुत्र थे वल्लभाचार्य जी के। उनके चार शिष्य हैं गोविंद स्वामी, नंददास जी, चतुर्भुज दास और चित्त स्वामी। चित स्वामी, चित स्वामी का बहुत सुंदर सुंदर दोहा है यहाँ पे, बहुत सुंदर सुंदर भजन है। चित स्वामी, चतुर्भुज, नंददास और गोविंद स्वामी, ठीक है ले लो। तो इसमें चतुर्भुज दास की यहाँ पर कथा आती है, तो मैं भूल जाऊँगा इसलिए पहले बता रहा हूँ उसको। तो इस जगह पर वो जो कुंभन दास जी हैं जो वल्लभाचार्य के शिष्य हैं, उधर एक बार बैठे थे वो। ये सब लोग सिद्ध महात्मा हैं, सखा भाव में है लेकिन सिद्ध महात्मा है। एक जगह बैठ के ध्यान करते बैठे थे, तो उनको अपने ध्यान में दर्शन हुए ठाकुर जी के। कैसे दर्शन हुए? ठाकुर जी बालक बनकर अकेले चुप चुप के एक मटका में लटके हुए हैं, गोपी के घर पे मटके में लटके हुए हैं, और लटक के, हाँ डॉक्टर ओमकराज जी, लटक के उसमें से माखन खा रहे हैं। और इतना उनको माखन पसंद है, वो इतने मग्न हैं खाने में, इतने मग्न हैं पूरा आनंद ले रहे हैं। उतने में बहुत सारा माखन खाते 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 उनकी धोती जो है ना वो पीछे से छूट जाती है। जैसे हम लोग पहनते ना पीछे ऐसे, तो पीछे का जो हिस्सा है ना वो, जैसे नौवारी में पहनते ना, वो हिस्सा उनका छूटने लगता है। तभी भी वो खा रहे, कभी भी खा रहे। लेकिन एक बार ऐसा होता है कि अभी वो गिर जाएगी धोती कैसे, तो उस समय भी उनको माखन खाने की क्रिया में बाधा नहीं लानी है। दे शुड नॉट बी इंटरप्शन। हाँ, क्या बोलते हैं उसको, अहितु की अप्रतिहता। माखन खाना भी एकदम एकदम अखंड, एकदम पूरा अखंड। तो अपनी माखन खाने की प्रक्रिया में बाधा नहीं आनी चाहिए, और धोती भी दोबारा लगी जानी चाहिए। तो क्या करना चाहिए उसके लिए? बहुत होशियार लोग हैं ये लोग, बहुत चतुर माता जी सब। हाँ, भगवान का मंतव्य जान लिया उन्होंने। भगवान ने कहा दो आम है ना, दो और पैदा करो, और दो पैदा करो और दो हाथ से धोती बांध दो। तो भगवान के कंधे के पीछे से दो हाथ पैदा हो गए, ऐसे पीछे गए, हमारे तरह से दो हाथ वचन पीछे जाके धोती को फिर से बांधा, फिर अंदर चले गए, फिर आगे वाले दो हाथ से माखन खाना चालू ही रह गया। तो ये दर्शन जो है कुंभन दास जी कर रहे हैं। उस समय उनकी पत्नी गर्भवती थी, तो जब उनको पुत्र हुआ उसका नाम रखा चतुर्भुज दास। जो उन्होंने दर्शन किया था ना भगवान का, उसका नाम दिया उस पुत्र को। और चतुर्भुज दास की भी बहुत अद्भुत कथाएं हैं। अभी उनका नाम ले तो एक कथा बता देता हूँ। कुंभन दास जी भी बड़े कवि भी थे, बड़े संत थे, बहुत चमत्कारिक उनकी बहुत सुंदर सुंदर कथाएं उनकी। तो चतुर्भुज दास जब बड़े हो गए, नाम रखा चतुर्भुज दास और बड़े हो गए, तो वो श्रीनाथ जी उनके साथ खेला करते थे। बाकी सबके लिए विग्रह हैं, इनके लिए तो साक्षात हैं। तो वो मंदिर में जाते थे तो ठाकुर जी तुरंत विग्रह से बाहर निकलते थे, किसको दिखाई नहीं पड़ते थे, केवल चतुर्भुज को दिखाई पड़ते थे। बोलेंगे आज क्या खेलेंगे, चलो आज गुल्ली डंडा खेलेंगे, आज क्या खेलेंगे, गेंद खेलेंगे। तो एक दिन बोले आज मुझे घोड़ा खेलना है। चतुर्भुज तो घोड़ा बन जा, मैं सवारी करूँगा। ये सब मंदिर में हो रहा है, और मंदिर में चतुर्भुज दास सबको दिखाई पड़ रहे हैं, लेकिन ठाकुर जी किसी को दिखाई नहीं पड़ रहे। तो लोग कहते थे पागल लड़े हैं, हमेशा कुछ बोलते रहता है, हंसते रहता है, कुछ बोलते रहता है। वो तो पागल नहीं है, साक्षात ठाकुर जी से बात कर रहे हैं वो, लोगों को दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। लाइक वेन चैतन्य महाप्रभु जब नित्यानंद प्रभु पनीहाटी में जब भी वो लीला कर रहे थे, तो महाप्रभु प्रकट हो गए ना, लेकिन किसी को दिखाई नहीं पड़ रहे। नित्यानंद प्रभु अपने हाथों से उनको खिला रहे हैं, लोगों को लगा नित्यानंद प्रभु तो भाव में हैं, लेकिन नित्यानंद प्रभु प्रत्यक्ष गौरांग महाप्रभु को दही चिड़ा खिला रहे थे, लेकिन किसी को नजर नहीं आ रहे थे महाप्रभु। उसी तरह से ये रोज बात कर रहे हैं उनसे, लेकिन किसी को नजर नहीं आ रहे हैं कि किससे बात कर रहे हैं। ठाकुर जी ने कहा कि आज घोड़ा बनो, तो वो घोड़ा बन गए और ठाकुर जी सवार हो गए उसके ऊपर, हाथ में डंडा लिया और हैट हैट करने लगे। फिर ये पूरे मंदिर में घूमने लगे, सब जगह घूम रहे हैं। तो लोग बोले ठीक है बालक है, अभी क्या खेल रहा है, अभी क्या बोलेंगे, लेकिन ये तो ठाकुर जी के साथ लीला कर रहे हैं। अरे ठाकुर जी ने उनको मंदिर के कोने कोने में घुमाया, सब जगह घुमाया, इधर ले चलो उधर ले चलो, लेफ्ट राइट सब जगह घुमाया उसको। बहुत देर घूमने के बाद, देखो ठंड का मौसम है ना, क्या होता है उसमें, ठंड के मौसम में क्या होता है बताओ? हाँ, अरे ब्लैडर जल्दी फुल हो जाता है, क्या करे बेचारा। तो बहुत देर तक घुमा वो, बोला ठाकुर जी अभी मुझे लग रही है जाना है। तो बोले घोड़ा बने हो तो घोड़े कैसा करो। घोड़ा बने हो तो जैसे घोड़ा करता है, थोड़ा घोड़ा रुकता है टाइम प्लेस करके, वो तो अपना काम करते रहता है। 1-2 नंबर सब चलते रहता है काम के साथ। तो अभी ठाकुर जी ने आदेश दिया तो क्या करे, तो वेग इतना हो गया उसका, क्या करे वो। ठाकुर जी हैट हैट कर रहे हैं, वो उसका पुतरा से भर गया पूरा। तो वहीं पर शुरू करता है वो, और ठाकुर जी उसको जानबूझ के सब गुस्साइयों के बीच में घुमाते। सब जगह इसकी धार घूम रही है सब जगह पर। इतने गोस्वामी लोग चिढ़ गए, इतने भड़क गए, कुमन दास जी बस हो गया तुम्हारा, अभी अभी तक तो ठीक था सब कुछ, अभी ये हद हो गई, अभी इसको मंदिर से बरी कर दो, उसको मंदिर में प्रवेश नहीं करने देंगे। मंदिर को पूरा भ्रष्ट कर दिया उसने, मैं मूत्र से पूरा मंदिर को भ्रष्ट कर दिया। और जैसे ये कर रहा था ना, तो लोग उसको पीटने लगे, तो ठाकुर जी उसको उतर गए और टालियां पीट के हंसने लगे और लोग उसको पीट रहे हैं, मार रहे हैं उसको, और उठा के उनको बाहर कर दिया उन्होंने। फिर कुंभन को बुलाया और खूब डांटा उसको। तो क्या बोलेंगे कुंभन दास जी, अभी क्या कहें। तो उस रात को विठलनाथ जी भगवान की सेवा में थे, विग्रह की सेवा में थे। फिर शयन का समय आया ना, तो मंदिर पट बंद हो गए, केवल मंदिर में अंदर ठाकुर जी और विठलनाथ जी थे। तो विठलनाथ जी से ठाकुर ने बात किया, उन्होंने कहा चतुर्भुज मेरा भक्त है, मैं घोड़ा बनकर उस पर सवारी कर रहा था, मैंने कहा था उसको करो तो उसने किया था, उसको मंदिर में आने के मना मत करना। तो विठलनाथ जी फिर गए हैं कुंभन दास जी के पास और बालक को गले लगाया है कि ठाकुर जी की आनंद के लिए सब कुछ कर रहा था, खुद के लिए नहीं कर रहा था वो। इसके आगे की भी बहुत सारी कहानियाँ हैं, लेकिन वो मैं यहाँ नहीं बोल सकता। बड़ी अद्भुत कहानी है उनकी। ठाकुर जी ने क्या क्या किया, हर प्रकार का मजाक किया उनके साथ में। ऐसे अपनी सख्य लीला की जो क्षुधा थी, उनकी भूख थी, ठाकुर जी ने इन 8 लोगों के साथ में पूरा किया। तो यहाँ की लीला ऐसी है, सुनो हरे कृष्णा सुनो, थोड़ा बहुत कष्ट हुआ तो खड़े रहो ना, क्या प्रॉब्लम है इसमें से। आपको इधर तो कथा वथा मिस हो जाएगी तो क्या फायदा है उसका। हरे कृष्णा। तो जब चंद्र सरोवर भगवान ने रास किया तो करोड़ों गोपियां थी, तो भगवान भी करोड़ों रूप धारण किए है ना, सबके साथ नृत्य कर रहे थे। तो यहाँ पर भी थोड़ा सा अहंकार हो गया लोगों को कि सबके साथ नाच रहे हैं, नहीं नहीं मेरे साथ नाच रहे हैं, सबको छोड़ के मैं एकदम विशेष गोपी हूँ। तो भगवान फिर अंतर्धान हो गए और इस जगह पर आए जहाँ पर अभी खड़े हैं, और उन्हें चतुर्भुज रूप धारण कर लिया, शंख चक्र पद्म गदा खड़े हो गए। तो गोपियाँ चंद्र सरोवर से आ रही थी और लताओं को पताओं को वेलियों को सब लोगों को पूछते पूछते आ रही हैं, आपने कृष्ण को देखा है कहीं, कभी कृष्ण को देखा है। तो सब लोग क्या बोलेंगे, तो सब जगह सब सबको पूछते 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 यहाँ पर आई, तो उनको रोड पर भगवान खड़े मिले। अभी आप लोगों को अगर रोड पर भगवान खड़े मिले तो क्या करेंगे, आप क्या करेंगे मुरलीधर बाबू, आप नंदोत प्रणाम करेंगे ना, अरे वैकुंठ के भगवान खड़े हैं भैया, नंद महाराज भी पूजा करते हैं उनकी, सब लोग पूजा करते हैं, नंद भवन में भी उनका अधोक्षज विष्णु का मूर्ति है, हमारे जगन्नाथ मिश्रा भी करते हैं, उनके भी योगपीठ पे मूर्ति है भगवान की, सब भगवान के विष्णु का पूजन करते थे और कृष्ण के लिए गौरांग महाप्रभु के लिए आशीर्वाद मांगते थे। लेकिन गोपियाँ इतनी भाव में थी, इतनी भाव में थी, उन्होंने विष्णु को पूछा कृष्ण को देखा आपने तो विष्णु ने बोला इस तरफ गए, तो सब गोपियाँ तुरंत उस दिशा में चली गई। ऐसा अनन्य प्रेम है गोपियों का, ऐसा नहीं कि वो विष्णु का आदर नहीं करते, लेकिन उसमें इतने भाव में है। कुछ जल्दी में होंगे, कुछ आपत्स्थिति होगी तो थोड़ा आपको दंडोत प्रणाम वांछा कल्प करेंगे फिर बात करेंगे आपसे उस स्थिति को देखते हुए करना पड़ता है। तो ये इतनी भाव में थी, तो विष्णु ने भी उनको देखकर चकित हो गए, विष्णु भगवान जो कृष्ण भगवान स्वयं है ऐसा हाथ दिखाया, तो आगे चली गई वो। उसके पीछे राधा रानी आई और राधा रानी ना एक भंवरे से बात करते हुए आ रही है कृष्ण समझकर, उसको कहते भ्रमर गीत। तो भंवरे से बात करके उसको कभी चिल्ला रही है, उसको कभी डांट रही है, कभी प्रेम से बात कर रही है, ऐसे करके घोरा ऐसा गुंजन कर रहा है और वो उसके साथ बात करते 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 भाव में आई है। और फिर राधा रानी ने जब विष्णु भगवान को पूछा कि कृष्ण कहाँ हैं, तो विष्णु भगवान इतने भाव विभोर हो गए, वो अपने दो भुजाओं जो एक्स्ट्रा बनाए थे ना, दो भुजाएँ उसको मेंटेन नहीं कर पाए, वो पिघल गई, वो द डिसअपियर्ड। मतलब क्या हुआ उसका, कि भगवान ने अपना ऐश्वर्य स्वरूप दिखाने का प्रयास किया ब्रजभूमि के अंदर, है ना। अब ब्रजभूमि क्या है, माधुर्य भूमि है, यहाँ पर सब माधुर्य है, साक्ष्य भी माधुर्य का है, वात्सल्य भी माधुर्य में है। माधुर्य का मतलब क्या होता है, कि माधुर्य में भगवान भगवान है इसका पता नहीं होता है, ऐश्वर्य में भगवान भगवान है इसका पता होता है। जैसे अर्जुन सखा है भगवान के लेकिन उनको पता है कि ये भगवान है, युधिष्ठिर महाराज सखा है भगवान के लेकिन उनको पता है भगवान है, कुंती देवी माता वात्सल्य भाव में है, कुंती देवी का भी लिस्ट के नाम आता है वात्सल्य में, लेकिन कुंती देवी को पता है कि ये भगवान है। तो ऐश्वर्य भाव में भी ऐश्वर्य दास्य होता है, ऐश्वर्य साख्य होता है, ऐश्वर्य वात्सल्य होता है, ऐश्वर्य माधुर्य होता है, मतलब जो स्वकीय रस जिसको रानियों ने अनुभव किया था। तो यहां पर किसी को पता नहीं है उसका, और ये भूमि ही माधुर्य की भूमि है, इसमें किसी को पता नहीं कि कृष्ण भगवान है। और कृष्ण बीच बीच में जब दिखाते हैं अपना ऐश्वर्य, तो माधुर्य इतना प्रधान है और इतना तीव्र है, उतना इंटेंस है कि उस माधुर्य तीव्रता के सामने इनका निर्माण किया हुआ ऐश्वर्य टिक नहीं पाता है। तो ऐश्वर्य खड़ा तो किया उन्होंने, ऐसा ऐश्वर्य खड़ा किया उनका, एक राधा रानी के प्रेम के सामने वो दो हाथ जो उन्होंने एक्स्ट्रा बना के रखे थे वो पिघल गए, शंख चक्र पद्मगदा भी गायब हो गए और कृष्ण रूप में आ गए वो बिना अपने कंट्रोल के। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ही डिड नॉट प्लान दैट इट विल डू आई विल डू लाइक दिस, लेकिन इनके प्रभाव से, जैसे गिरिराज के प्रभाव से पुलत्स्य मुनि को मूत्र वेग आया, बाकी तो कंट्रोल करने में माहिर थे वो, लेकिन गिरिराज का भक्ति का प्रभाव इतना तेज था कि वो मूत्र वेग आया और वो कंट्रोल भी नहीं कर पाए, उनकी कंट्रोल में नहीं था वो कि क्या हो रहा है, उनको पता ही नहीं। जब वो भाग रहे थे पुलत्स्य मुनि लघु शंका का निवारण करने के लिए, तो ये सोचने रहे हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है, आज इतना वेग है कि सोचने का मौका ही नहीं है, तुरंत निवारण करना है पहले, इतना भक्ति का प्रभाव है गोवर्धन का। उसी प्रकार से राधा रानी का जो माधुर्य प्रेम है इतना तीव्र है कि इसके सामने भगवान कोई ढोंग नहीं कर सकते, ऐश्वर्य का पिघल जाता है वो। यशोदा माता का वात्सल्य का जो प्रेम है वो इतना तीव्र है कि कुछ समय के लिए वो चौंक गई, कह रही मुंह में क्या दिखाई पड़ रहा है, कौन है ये, भगवान तो नहीं है, अरे बाप रे, इसको मैंने डांट दिया कितनी बार, कितनी बार दंड दिया, कितनी बार क्या क्या सिखाया, ये किया वो किया, तो तुरंत प्रार्थना करने लगी वो। लेकिन भगवान ने जैसे ही मुंह बंद किया ना, तुरंत सब भूल गई वो, तुरंत गले लगाया, तुरंत स्तनपान कराया उसको, बाद में याद नहीं किया यस्टरडे टुमारो डे आफ्टर, पता है परसों क्या हुआ था, ऐसा नहीं, खत्म हो गया वो। इतना माधुर्य का प्रभाव है कि जो भी ऐश्वर्य का दर्शन होता है, कुछ बातें होती है, टिकता ही नहीं है। फॉर एग्जाम्पल अभी देखो घर का सहायता है, प्रसंग आता है उसमें ना, गोवर्धन कहाँ यहाँ उठाए ना, तब भगवान नंदगांव में थे, तो यहाँ के वहाँ के चौरासी खंभा में बैठ के वो रोज शाम को मिलते हैं, सब बड़े गोप मिलते हैं और चर्चा करते हैं कि क्या हुआ, भगवान ने क्या किया, तो बड़ा आनंद लेते हैं वो। तो वो बहुत बड़ा सत्संग जगह है वो, वहाँ पर सब बड़े बड़े ग्वाल बाल गोप जो है वो आते हैं और बैठ कर सारे दिन का लीला जो सुना है बच्चों से वो सब डिस्कस करते हैं, और कुछ संकट की बात है तो और भी चर्चा करते हैं, डिसीजन लेते हैं, जैसे कि वहाँ डिसीजन लिया था कि अभी चलना चाहिए यहाँ से और शिफ्ट हो गए नंदगांव बरसाना में। तो चौरासी खंभा में क्या है ना, उसको उसका नाम दिया है विस्मय लीला, ऐसा नाम दिया उसको। कौन सी विस्मय लीला, विस्मय मतलब क्या, सरप्राइज, चकित होना, सरप्राइजिंग, अनबिलीवेबल, ऐसा विस्मय। तो उसमें क्या हो रहा है कि गोवर्धन को उठाने के बाद में सब ग्वाल बाल बैठे हैं और सब सराहना कर रहे हैं, वाह नंद तेरा बेटा कितना बड़ा है, नंद तेरा बेटा जो है वो कितना महान है, हो सकता है वो ऋषि होगा। तो नंद बाबा क्या बोल रहे हैं, ऋषि, अरे ऋषियों का बहुत कंट्रोल होता है अपने इंद्रियों पर, इसको जब भूख लगती है ना तो ये क्या क्या करता है, जब तो माखन नहीं मिलता है ना तो किसी के घर में जाके बच्चों को चिमटा निकालता है जो पलने में सोए हुए हैं, उनके कान में पानी डालता है और उधर भी नहीं रुकता है, कभी और भी गुस्सा आ गया तो गोपियों के घर में पेशाब करता है, ये कैसा ऋषि है, ऋषि ऐसा करते क्या? तो बोलते हैं नहीं देवता होगा, देवता, मतलब देवता लोग डरते किससे क्या, ये लड़का आकाश में जब बादल गरजते ना तो भाग के मैया के गोद में आते, मैया डर लग रहा है। ऐसे एक एक गोप बाल गोप लोग जो है एक एक ऐश्वर्य की बात कर रहे हैं, दे आर टॉकिंग अबाउट ग्लोरी इज अबाउट ऐश्वर्य पावर ऑफ कृष्णा, और एक एक बात को नंद महाराज काट रहे हैं। उसके बाद में इतना गौरव हुआ, उतना गौरव काटा गया यहाँ से, और बाद में सब लोग ना इतना हंसे, इतना हंसे, इतना हंसे कि अपने स्थान से गिर गए, जमीन पर लोटपोट होके पेट पकड़ के जोर जोर से हंस रहे, और वो हंसी में सारा जो ऐश्वर्य था उनका गौरव वर्णन किया था वो सब भूल गए, मतलब कुछ भी हुआ हमारा कहना है, मेरा प्रिय बेटा है। तो दे ट्राई टू क्रिएट सम ऐश्वर्य डिस्कशन, इट इज स्मैश्ड बाय द माधुर्य पावर, दैट इज द ग्लोरी ऑफ दिस प्लेस। यहां पर यशोदा माई को कितनी बार बताएंगे तो बाद में भूल जाती हो कि ये कृष्ण है, भगवान है, नॉट पॉसिबल ओनली, क्योंकि भगवान चाहते ही नहीं है कि ये लोग जान जाए कि मैं भगवान हूँ। क्योंकि कैसा है ना, अभी समझो कोई बड़ा आदमी है, समझो अपना तेंदुलकर है, समझो क्रिकेटर, क्या वो मीरा रोड के मार्केट में आके सब्जी खरीद सकता है या बार्गेन कर सकता है? कैसा दिला, एवडा दे, तीन दे, 20 रुपये वाला तीन दे, 7 रुपये बाटा, नहीं 20 रुपये वाला तीन दे, ऐसा हम लोग कर सकते हैं ना आराम से, किसी दुकान में घुस सकते हैं, कुछ भी खरीद सकते हैं, किसी से को मिल सकते हैं। अरे उनको ये जो हमको आनंद मिलता है ना, सामान्य आनंद, उनको नहीं मिलता है। तो वो छुट्टियाँ मनाने कहाँ जाते हैं? ऐसे जगह जाते हैं जहाँ पर कोई जानता नहीं उनको, जहाँ पर क्रिकेट कोई खेलता ही नहीं वहाँ पहुँच जाते हैं वो, फिर वो अपना आराम से घूमते हैं, शॉपिंग करते हैं वगैरह। एटलीस्ट हम क्या है ना, सामान्य व्यक्ति की तरह भी थोड़ा जीवन जीने का भी अनुभव होता है ना। यू कैन ऑल्सो एक्सपीरियंस लाइफ ऑफ अ सिंपल पर्सन, वो कहीं भी जाके खरीद सकता है, कैसे भी घूम सकता है। लेकिन जहाँ आपको लोग जानते हैं वहाँ पर आप ऐसा आप नहीं कर सकते हैं। तो भगवान भी देखो ना, दुनिया भर में भगवान है, वो सब लोग दंडवत करते हैं उनको, सब लोग प्रणाम करते हैं, आरती करते हैं, पूजा करते हैं, स्तुति करते हैं। तो उनको भी लगता है कि कहीं ऐसी जगह होनी चाहिए जहाँ पर कोई जानता नहीं कि भगवान हूँ, सब मुझसे केवल ऐसा प्रेम करें कि कोई दोस्त है किसी का, कोई बॉयफ्रेंड है, गर्लफ्रेंड है, कोई किसी का बच्चा है, कोई किसी का फ्रेंड है, गाय है, बैल है, भैंस है, मयूर है, कोकिला है। ही वॉन्ट्स टू कम टू दैट प्लेस वेयर ही कैन जस्ट लिव सिंपल लाइफ, वेयर नो वन नोज हिम दैट ही इज गॉड। तो वो भूमि है वृंदावन भूमि, ऐसा रस बना के रखा है इधर, यहाँ पर कितना भी आपको याद दिलाएगा ना तो याद नहीं आएगा कि ये भगवान है तो वैसे इन्होंने यहाँ पर कोशिश किया अपना ऐश्वर्य दिखाने का। भगवान के पीछे क्या भाव भगवान का है, देखो हमारी गोपियाँ कितनी प्रेम करती है उनको, जैसे विष्णु को आदर है लेकिन वो परवाह नहीं करते भगवान के सामने विष्णु के भी। फॉर एग्जाम्पल अभी ग्वाल वालों ने एक बार ना भगवान से बहुत जिद किया, अरे कन्हैया हमने सुना है कि तुम तो विष्णु हो और सृष्टि के मालिक हो, स्वामी हो, वैकुंठ नाथ हो, तुम अखिल ब्रह्मांड नायक हो तुम हमको, आपको हमको वो ना वैकुंठ देखना है। जैसे अभी वो लड़का मुझे वहाँ था ना चंद्र सरोवर पे, बोल रहा था वो तो पंडा थे ना, वो बोल रहे थे कोई नहीं दे रहा है वगैरह, धोती कुर्ता पहन के था ना, बोला बाबू मुंबई का एड्रेस दो, अब मुंबई देखना है हमको, आपकी माया नगरी देखना है। बोला क्या करोगे माया नगरी में आके? नहीं नहीं बाबू देखना है, समुद्र देखना है, मुंबई देखना है। वैसे ब्रजवासी लोग भगवान को बोल रहे हैं कि हमको वैकुंठ दिखाओ, तो भगवान ने कहा आपको आनंद नहीं आएगा वहाँ पर, आप नहीं 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 हमको वैकुंठ दिखना, नहीं नहीं हमको वैकुंठ, बहुत जिद करने लगते। तो भगवान ने कहा ठीक आग बंद करो, तो उन्हें आग बंद किया, फिर बोला खोलो, जब खोला तो एकदम वैकुंठ में पहुँच गए वो। हे वैकुंठ, इतना ऐश्वर्य संपन्न, इतनी लक्ष्मियाँ भगवान की सेवा कर रहे, इतना चकाचौंध सौंदर्य और तेज और सब जगह गहने और ये ऐश्वर्य रत्न जड़ित खंभे सब जगह पर सिंहासन, अरे बाप रे इतना ऐश्वर्य, और किधर है कृष्ण कहाँ गए? दूर है, दूर दूर एकदम ऊंचे सिंहासन पर लक्ष्मी राधा रानी लक्ष्मी बनी हुई है और वो विष्णु बने चतुर्भुज बनकर बैठे हैं आसन में, और बहुत फासला है बीच में, बहुत अंतर है उसके अंदर, बहुत सारे सैनिक भी खड़े हैं, मंत्रीगण भी खड़े हैं, उनका पोजीशन लेके खड़े हैं उसके दूर एकदम, मतलब अगर मिलना है तो मिल नहीं सकते उनको, इतनी दूर है वो, कौन अप्रोच है? तो वहाँ बैठ कर सबकी सेवा हो रही है, आरती पूजा हो रही है, भोग लगाया जा रहा है, गीत गाया जा रहा है, कोई यहाँ बैठ कर गा रहा है, कोई यहाँ नृत्य कर रहा है, इतना ऐश्वर्य है चकाचौंध, सब ग्वाल बाल खड़े देख रहे हैं। जैसे कभी गाँव का आदमी आता ना शहर में, तो हाउ ही इज लाइक बिविल्डर्ड ना, ऐसा क्या सब लोग ऐसे अलग कपड़े पहन रहे हैं, अलग बातें कर रहे हैं, अलग स्टाइल है उनका, हम लोग ऐसे सिंपल लोग हैं, एकदम सहमे जाते पूरे। ऐसे बहुत देर तक ना उनको कुछ देर बाद में घुटन महसूस होने लगी, साइड फीलिंग सफोकेटेड है, किधर आ गए हम लोग? तो जोर से पकड़ा, कन्हैया बस हो गया, जाना है वापस। तो आवाज़ आई आँख बंद करो, तो आँख बंद कर लिया, फिर आवाज़ आई आँख खोलो, आँख खोल दिया, फिर ब्रज में सामने खड़े वनमाला पहने हुए, मोरपंख धारण किए हुए। अरे वहाँ ना मुरली है, ना मोरपंख है, ना वनमाला है, कुछ नहीं है, ना कान में ऐसा लिली का फूल है, ना कान में कोई पत्ते लटका के रखे, ऐसा कुछ है नहीं, ऐसा पूरा वैजयंती माला, हाँ वो जो कौस्तुभ मणि वैजूर्य मणि का मुकुट, ऐसे मकर कुंडल ऐसे पहन के खड़े एकदम, भैया हमारा करने ही है क्या, अजय दिख रहा है हाँ लोगों को भाता है बहुत, लेकिन कन्या को देख कर ग्वाल बालों को लग रहा है ये क्या हो रहा है, कौन सा पेस पहने? समझो अभी आप तुरंत पुलिस का ड्रेस पहन के आएंगे तो बोले क्या हुआ मुरलीधर प्रभु को, अच्छा दांत वांत निकालते थे अभी पुलिस कैसे बन गए तो बोले कि नहीं मुंबई में मैं पुलिस हूँ, यहाँ पर दांत निकालता हूँ ऐसे भावना हो रही है उनको कि कहाँ पहुंच गया कन्हैया हमारा, क्या कर रहा है, नहीं चाहिए, कम बैक, चलो गाय चराएंगे यहाँ पर, चलो मखन माखन चुराएंगे। उनको वो हैबिट है उनके साथ में, डंडा गुल्ली खेलने का, पतंग उड़ाने का। देखा ना कल, देखा ना वृंदा देवी के मंदिर में सबने देखा पतंग, वो मकर संक्रांति का उत्सव का है। राधा रानी का चेहरा भी है पतंग पे, उधर भी राधा रानी को देखना है उनको, है ना, बड़ा उत्सव होता है पतंग का यहाँ पर। नंदगांव से भगवान पतंग उड़ाते हैं और पतंग बरसाने की ओर उड़ाते हैं, बहुत होशियार है, हवा किधर भी हो लेकिन उनकी पतंग उनके दिल की हवा जहाँ बह रही है वहाँ पतंग उड़ती है जहाँ इनकी दिल की हवा बहती है वही पतंग उड़ती है। तो ये जो ऐसे पतंग उड़ाते हैं ना कि पतंग की छाया जो है ना वो गोपियों के आंगन में आती है, और ये गोपियाँ जो है ना अभी किसी की बहू है, किसी की बहन है, किसी की मम्मी है, तो जैसे ही पतंग की छाया आती है ना तो पागल सी हो जाती है, सब कुछ काम छोड़ के आंगन में आकर वो ऐसे ऐसे नाचती है। तो वो सासू बोलते कहा बावड़ी है गई हो, क्या कर रही हो क्योंकि पतंग की छाया के पीछे कौन नाचता है, पागल होगा तो नाचेगा ना तो पतंग की छाया जहाँ हिल रही है ऐसे हिलती ना वैसे ऐसे, तो ये भी नाच रही है उसके पीछे, ऐसा है। तो यहाँ पर पतंग का बहुत बहुत कथाएं हैं, लीलाएं भी है पतंग की, पतंग लीला बोलते हैं उसको भगवान की। तो हमारे रमेश चंद्र गोस्वामी जिसके भांडार है, भांडारपुरी, कहीं भी ऐसा नोच दो उनको तुरंत चालू हो जाएंगे, पतंग की बात करेंगे तो पतंग की आपको चार पांच लीला सुना देंगे, ऐसा है प्रेम यहाँ का। तो पतंग की बात के पहले क्या बात थी हमारी चल रही थी, हाँ हाँ, तो ऐसे भगवान है हमारे कि यहाँ पर वो आकर विदाउट एनी ऑरा रहना चाहते हैं, नो देवता, नो मैनेजमेंट, नथिंग। हमको भी कभी बोर होता है ना मैनेजमेंट कर करके, तब भी चले जाते हैं कहीं सोने के लिए कुछ समटाइम्स वी गो टू अ प्लेस टू डू नथिंग, दैट इज द एजेंडा, व्हाट इज द प्लान टू डू नथिंग, जाके बैठ जाने, जो दिल में आया वो करना है, सोना है, उठना है, बैठना है, योगा करना है, चलना है, जब चाहे जब करना है, जब चाहे सो जाना है। समटाइम्स इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू गेट रिलीव्ड, है ना। तो वैसे भगवान भी चाहते हैं कि भाई इतना दुनिया भर का कारोबार करना है, क्यों करना है, वृंदावन में आके खेलना है, अपनी माँ के साथ खेलना है, गोपियों के साथ खेलना है, बाल बालों के साथ खेलना है, गैयाओं को चराना है। हाँ, कहाँ वैकुंठ में मौका है गया चराने का बताऊँ, वैकुंठ नाथ घाय चरा रहे हैं, ऐसा होता है कभी इधर ही होता है वो, हाँ चारा दूसरे चार गाय वो तो हम लोग खाली कल्पना कर सकते, ऐसा होता नहीं। लेकिन तो अभी यहाँ पर जूता भी नहीं पहनते, वो जूता भी नहीं पहनते हैं क्योंकि ये इसलिए पृथ्वी बहुत खुश हो गई थी। भागवत में वर्णन आता है जब भी भगवान ने जब जन्म लेने का समय आया ना तो पृथ्वी बहुत आनंदित हो गई थी, और पृथ्वी का वचन भी वहाँ पर आता है कि पृथ्वी कहती है कि अभी मेरे शरीर पर इनके चरणों के अलंकार निर्माण होंगे, माई बॉडी विल बी डेकोरेटेड विद द लोटस फुट प्रिंट्स ऑफ माई लॉर्ड, क्योंकि उनको पता था कि इस ब्रजभूमि में वो जूता नहीं पहनने वाले हैं, इसलिए इस ब्रजभूमि में सब जगह पर उनके चरणों के चिन्ह जो हैं बने हुए हैं, कुछ नष्ट हो गए कुछ अभी भी हैं, और अभी भी ये छोटी बठैन बड़ी बठैन में बहुत सारे चिन्ह हैं, नंदगांव में एक चिन्ह है, वो शामकुटी में गोवर्धन में एक चिन्ह है, हाँ उसके बाद बहुत बड़ा चिन्ह है, गिरिराज जी पर चिन्ह भगवान ने स्वयं बनाकर गोस्वामी जी को दिए थे वो चिन्ह हैं, और श्री जी में जाएंगे तो वहाँ चरण चिन्ह हैं, सिर्फ बहुत जगह अभी अभी चरण चिन्ह हैं। और उधर काम्य वन में ना भगवान ने वो व्योमासुर का वध किया था ना, आकाश में वध किया था उसका, लेकिन आकाश में युद्ध जब होता था तो बार बार जमीन पर छलांग लगाते थे, फिर आकाश में कूदते थे, फिर जमीन पर छलांग लगाते थे। तो जब जब जमीन पर छलांग लगाते थे तो भगवान के हाथों के गले की माला के और पैरों के निशान वहाँ पर मुमकिन है हो गए हैं, चरण पहाड़ी पे, उसका नाम चरण पहाड़ी है। और नीचे जब व्योमासुर का और भगवान का युद्ध हो रहा था ना तो उस समय इतना भयंकर युद्ध हो रहा था कि धरणी कांप रही थी ऐसे भय से, इतना भयंकर युद्ध हो रहा है। तो बलराम जी आए वहाँ से, उन्होंने अपने पैर से भूमि को ऐसा दबाया, अपना उत्तरी ऐसा गिराया और पृथ्वी को बताया डोंट वरी, आराम से रहो, कांपने की जरूरत नहीं है, शांत रहो। पृथ्वी को सांत्वना दिया। तो उधर भी बलराम जी के चिन्ह हैं और बलराम जी का दुपट्टे का निशान है उधर, एक जगह पर भगवान के हाथ के निशान है, एक भगवान पर भगवान गले की माला के निशान है, एक जगह पैर के निशान है, देखो। तो ये ब्रजभूमि जो है उनके चरणों से चिन्हों से अलंकृत है, शी इज ऑर्नामेंटेड विद द लोटस फिट प्रिंट्स ऑफ कृष्णा। सभी ग्वाल वालों ने भी तय किया था गायों ने मिलकर कि भगवान के चरण चिन्ह हम नहीं मिटाएंगे, कभी उन पर नहीं चलेंगे, उनको बनाए रखेंगे। तो ये भगवान का जरूरत है कि भगवान भी अपने ऐश्वर्य को अपने पोजीशन को छोड़कर एक सामान्य व्यक्ति बनकर अपने भक्तों के बीच में रहना चाहते हैं, और इसलिए ब्रजवासी गौरवशाली हैं। उनका प्रेम भगवान के ऊपर भगवान भगवान है इसलिए नहीं है, उनको पता ही नहीं भगवान भगवान है, लेकिन निरपेक्ष प्रेम है उनका। वो भगवान के पास कुछ चाहते नहीं है, भगवान को देना चाहते हैं, प्रेम देना चाहते हैं, सेवा देना चाहते हैं। वो एक लीला में भगवान को गोपियां बोल रही है कि हमने सुना है तुम राम थे, पीछे बल्लू भैया लक्ष्मण थे, हमको दिखाओ, दर्शन कराओ। नहीं नहीं नहीं, किधर, आई डोंट नो, ऐसा बता रहे हैं। और बताया मैंने आपको कथा, वो तो वो कामे मन की कथा है। एक बार वो वहां पर लीला कर रहे थे तो सखियों ने बोला, राधा रानी ने मिलकर बोला कि हमने सुना है कि आप पिछले अवतारों में राम और लक्ष्मण थे, हमने सुना है आपने रावण का वध किया है। बोले मैं तो ग्वाल बाल हूँ, मैं कहाँ राम और भगवान बोल रहे हो, वो सब गलत बातें। तो वो जिद करने लगते हैं, फिर वो जिद करने लगते तो फिर भगवान मना करते हैं, फिर बोलते हैं अगर आप नहीं दिखाओगे आपका रूप तो कल से आपसे बात नहीं करेंगे। समझो, मैंने आपको बोला कल से बात नहीं करेंगे, अगर मैं आपको बहुत क्लोज हूँ तो आपको दुख होगा। अरे ओके, रिलेशन है तो बोला ठीक है, मत करो, क्या फर्क पड़ता है, लाइफ इज गॉन, लाइफ विल गो ऑन। लेकिन भगवान को अगर गोपियों ने कहा कि हम आपसे बात नहीं करेंगे, उनके लिए वज्राघात है वो। जब भगवान बालकों के साथ खेलते थे ना, तो बीच में वत्सपाल लीला में माता आती थी उनको बुलाने के लिए, अरे चलो चलो, नंद बाबा आ गए, वेट कर रहे हैं आपका, क्या तुम जैसे स्ट्रीट बॉय जैसे खेल रहे हो, चलो अभी चलो, बाबा वेट कर रहे हैं, चलो। तो वो सुनते नहीं थे, सुना नहीं पड़ता था उनको। तो रोडी मैया कहती थी हमारी नहीं सुनते मैया, दीदी आप ही जाओ आप। तो शोदा में आके डांटती थी उनको, तुरंत अरे हाँ, और वो जाने लगते थे। उस समय ग्वाल बाल कहते थे अभी हार रहे हो इसलिए जा रहे हो, अभी जाओ, लेकिन बाद में दोबारा खेलने को नहीं लेंगे आपको। दोबारा जाते थे क्योंकि उनके लिए सबसे बड़ी धमकी है वो, अगर ग्वाल बाल खेलने में नहीं लेने वाले हैं तो उनके लिए सबसे बड़ी धमकी है वो, अगर गोपियां कहेंगे बात नहीं करेंगे, सबसे बड़ी धमकी है उनके लिए वो। तो भय, जो मूर्तिमान भय है उनसे भयभीत है, लेकिन गोपियों ने कुछ बोला ना बात नहीं करेंगे तो डर जाते वो। मैया ने डंडा दिखाया, डर जाते हैं, यही माधुर्य है, हाँ, दिस इज माधुर्य। तो बहुत जिद करने के बाद जब धमकी दिया तो हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, कोई बात नहीं, आंख बंद करो सब लोग। तो आंख बंद कर दिया, बोला आंख खोलो, तो आंख खोला तो क्या है, मुरली वाले कन्हैया धनुधारी बन गए, हाँ, दुर्वा के रंग वाले बन गए, नीला रंग गया और दुर्वा का रंग आ गया, हाथ में धनुष बाण तोणीर, और बल्लू भैया जो है वो भी लक्ष्मण बन गए गोरे, हाथ में धनुष बाण जटाधारी वलकल पहने हुए वनवासी, समुद्र पैदा हो गया आंखों के सामने, लिंग पैदा हो गया समुद्र के किनारे, बैठ गए राम लक्ष्मण, उन्होंने शिवलिंग का स्थापना किया, पूजन किया उसका, और आए बाहर, और क्या, सारे ग्वाल बाल बंदर बन गए, सारे ग्वाल बाल बंदर बनकर उन्होंने सेतु बांधना शुरू किया, और कुछ ही क्षणों में पूरा सेतु बन गया, पूरा पानी भरा हुआ है, जैसे आप लड़कियां यहाँ बैठी हुई हैं, औरतें माता जी, ऐसे पूरा प्रेक्षक यहाँ बैठे हुए हैं, यहाँ लीला चल रही है। और उस पर सेतु बन गया पूरा कुछ ही मिनटों में, और सब राम लक्ष्मण सारे ग्वाल बाल चढ़कर चले गए उसके अंदर। जब वहां पहुंचे तो क्या हुआ, रावण पैदा हो गया, दशानंद रावण, यहाँ धनुष बाण रथ में लेकर श्रीलंका पैदा हो गई, यहाँ से प्रभु ने बाण मारा और रावण धराशायी हो गया। बोलो प्रभु रामचंद्र की। सब लोगों ने बड़ा आनंद लिया, फिर आवाज आई आकाश से आंख बंद करो, फिर आंख बंद किया, फिर बोला खोलो, जब खोल दिया तो कृष्ण बलराम दोबारा उनके सामने ग्वाल बाल के रूप में, सारे बंदर चेंज होकर ग्वाल बाल बंद कर आए, लेकिन रामेश्वर सेतु बंधा समुद्र और श्रीलंका वही रह गए। इस प्रकार से कामेवन में आज भी दर्शन है, रामेश्वर का दर्शन है, सेतु बंध का दर्शन भी है, बड़े अद्भुत है। जब मैं पहली बार गया था ना, आई वाज शिवरिंग एक्चुअली, यू नो, इन हैप्पीनेस कि अरे सुना था मैंने, लेकिन क्या अद्भुत दर्शन है। ऐसे एक लाइन है खड़कों की, ऐसी शिलाओं की, वहां तो जाती है, उसके एंड में श्रीलंका है। और उधर जल था, अभी जल तो नहीं है। तो ऐसे जगह जगह पर थोड़ा थोड़ा ऐश्वर्य उत्पन्न हो गया, लेकिन वो समाप्त हो गया उधर ही, टिक नहीं पाया। तो ऐसे भी यहाँ पर है। तो ये चतुर्भुज नारायण जी ना खड़े ना अभी यहाँ पर चार भुजा में, ये जो सरोवर है ना यहाँ का, एक क्षीर सागर है। जैसे नारायण उत्पन्न हो गए तो उनके पीछे क्षीर सागर प्रकट हो गया, और वो क्षीर सागर में कमल में खड़े थे जो इनके रास्ते में था। ऐसा विशाल दृश्य है, ऐसा नहीं कि अकेले कोने में खड़े, अपना पूरा ऐश्वर्य के साथ खड़े हैं, पूरा बड़ा कमल, विशाल कमल है, विशाल कमल क्षीर सागर में है, उसमें भगवान खड़े हैं और दर्शन दे रहे हैं। तो उन्हीं को पूछा उन्होंने, तो ये बड़ा अद्भुत था ना, वो भगवान हमको दिखा बता रहे हैं उनका चतुर्भुज रूप जो है यहाँ का, आपको गोपियों के प्रेम का एक अनुभव दे रहा है कि गोपियों का प्रेम क्या था भगवान के ऊपर। तो बड़ी अद्भुत जगह है ये, और यहाँ से वो गिरिराज जी आपको दिखाई पड़ रहे तो अच्छा है, दूर गिरिराज जी का दर्शन है यहाँ से। कुछ मंदिर भी दिखाई पड़ रहे हैं गिरिराज के ऊपर से, और सनातन गोस्वामी जी यहाँ से परिक्रमा लगाया करते थे रोज, एवरीडे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे। थैंक यू फॉर रिमाइंडिंग। ऐठा कदम का बताना रह गया ना, तो ऐसा है ना कि भगवान, अभी देखो जब वर्षा हो रही थी ना बहुत घनघोर, उसके पहले भगवान ने कहा था ना, अरे बंद करो इसकी पूजा, गोवर्धन की पूजा करेंगे, सारा आइटम लगाया जाए यहाँ पर, सब इधर लगा दो, सब भोजन भोग लगाया गया, परिक्रमा किया गया, अच्छा भोजन किया, सब लोगों ने आनंद लिया, उसके बाद में वर्षा शुरू हुई है ना। जब वर्षा शुरू हुई तो इतनी वर्षा हुई कि कितने, अभी मैं एक बार नेशनल पार्क में घूमने गया था तो ना फर्स्ट बारिश थी, वो लिटरली आपको बताता हूँ मैं, 5 मिनट के अंदर ना वो नदी फ्लड हो गई, 5 मिनट्स, ओनली 5 मिनट पहले वो ड्राई था और हम लोग चल रहे थे, वॉकिंग कर रहे थे, अचानक वर्षा शुरू, मैं एकदम तुरंत वो नेशनल पार्क की गाड़ी में घुस गया, बस में, उनके वैन में, और बैठा तो 5 मिनट के अंदर ना वो नदी है ना वहाँ की, वो फ्लड हो गई पूरी। ऐसी घनघोर वर्षा मैंने देखी, अद्भुत वर्षा, मैंने फोटो भी निकाले उसके। यहाँ तो इतनी वर्षा हुई कि उनके घर बहने लगे, गाय बैल बहने लगे, सब कुछ बहने लगा। बोलो, मराठी में कहते ना, होते अच्छा न होता था, मीनिंग अभी था अभी नहीं हो गया, खत्म। सब बचरे बह रहे, गाय बह रहे, वो बह रहे, सब ऐसा, इतना घनघोर वर्षा हो रही है, अंधेरा छा रहा है, ठंड हो रही है, इतनी कांप रहे सब लोग, डर के मारे, तूफान आंधी, बिजली चमक रही है, इतना घनघोर संकट था उस समय। सब लोग कृष्ण कृष्ण महाबाहो पुकार रहे हैं, कृष्ण कृष्ण महाबाहो। सब लोग आदत बना दो, जब भी संकट आए तो उन्हीं को याद करने का आदत बनाओ, बहुत इंपॉर्टेंट है वो। क्या इंपॉर्टेंट है इसके अंदर कि अगर हम लोग होते ना उसके बीच में, ग्वाल वालों के बीच में, तो उसका नाम नहीं लेते, क्यों? अरे इसने तो गड़बड़ किया है पूरा, इसकी बात सुन लिया ना इसलिए गड़बड़ हो गया है, दूसरे दोबारा उसको नहीं पुकारेंगे, और गड़बड़ डालेगा हमको, इतना बड़ा संकट खड़ा कर दिया हमारे सामने, सालों भर का रिवाज तोड़ दिया, ये भी कोई बात हुई? और ये नंद बाबा भी कैसे हैं, इतने छोटे से बालक की बात सुनकर पूरा प्लान चेंज कर दिया, उनको भी थोड़ा अकल होनी चाहिए ना, बच्चा तो बच्चा है, वो कुछ भी कह सकता है, नंद बाबा को तो अकल थी कि नहीं? ऐसे हम लोग सोचने लगेंगे, गॉसिप करने लगेंगे, लेकिन उन्होंने उनकी बात भी मान ली, और जब संकट आया तो फिर भी वो उन्हीं को पुकार रहे हैं, ये सोचकर नहीं पुकार रहे हैं अब कहाँ ले जाएगा। और ये वो क्या कृष्ण बलराम भगवान क्या बोल रहे हैं, चलो मेरे साथ, अब यू डोंट नो वेयर इज गोइंग टेक यू, कोई दोबारा और कोई संकट में डालेगा क्या मालूम, लेकिन पूरी श्रद्धा के साथ में उसके पीछे जा रहे हैं, जस्ट गोइंग बिहाइंड हिम, और पता नहीं कहाँ ले जा रहा है, दैट इज अनदर थिंग। नहीं नहीं, पहले बोलो कहाँ ले जा रहे हो, पहले गड़बड़ करके रखा है, अभी बुला रहे हो, पहले बताओ कहाँ जाना है, ऐसा नहीं है, सो मच फेथ इज देयर। तो गए उसके पीछे, पीछे पीछे गए तो यहाँ आए, उनको लेकर इस स्थान पर आए। तो अभी वाल वाल पूछने लगे, अभी क्या करोगे? तो अब मैं ना गिरिराज को उठाऊंगा, समझो अभी आपका, आपकी बेटी है, वो बोलेगी कि मैं ना पर्वत को उठाऊंगी, तो आप क्या बोलेंगे? हा 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 हरी बोल, वेरी नाइस वेरी नाइस। और इतना ही नहीं बोलेंगे, वेली भाई तो मुरलीधर प्रभु आएंगे, उनको बोलेंगे हमारे बेटी ना बोल रहे थे कि पर्वत उठाऊंगी, फिर और प्रभु जी आएंगे तो उनको बोलेंगे हमारे बेटी ना बोल रही थी पर्वत उठाऊंगी, आपके लिए एक विनोद का समय हो जाएगा वो। तो ग्वाल वाल भी हंस रहे हैं, क्या तुम इतने से बालक इतना बड़ा गोवर्धन पर्वत कैसे उठाओगे? तो नहीं नहीं मैं उठाऊंगा। तो बोल रहे हैं ऐसा कुछ करो ताकि हमको थोड़ा यकीन आ जाए कि आप उठा सकते हो, क्योंकि दे थिंक देयर इज द सिमिलर ना, समवयस्क है, फ्रेंड्स है, क्या उसमें आई कैन लिफ्ट, हाउ कैन यू लिफ्ट। तो वो गए उधर और कदम का पेड़ ना उन्होंने ऐसा उखाड़ के ऐसा हाथ से मोड़ दिया, पूरा ऐसा ट्विस्ट कर दिया। तो वो तब ग्वाल वाले ने कहा जय हो जय हो, यस नाउ वी आर कन्विंस्ड। तो वो पेड़ है वो जो भगवान ने अपने मित्रों को कन्विंस करने के लिए दिखाया। इमेजिन कितना बड़ा, अभी तो वो तो सूखा हुआ पेड़ है, अभी यहाँ तो यह पेड़ देखो, वो जो पेड़ है ना देखो, ये पेड़ कितना बड़ा पेड़ है, इतना विशाल है, भांडेर में कितना विशाल पेड़ है, वैसा वो कदम का पेड़ था, विशाल पेड़। तो भगवान ने उसका बीच का जो शाखा था ना, शाखा तो बुंदा बोलते उसको, ट्रंक, उसको पूरा उन्होंने घुमा दिया, पूरा कपड़े के तरह निचोड़ दिया पूरा उसको। तो वो उसका प्रमाण है। उसके बाद में भगवान ने यहाँ पर आकर वो प्रविष्ट गुफा में प्रवेश किया है और गिरिराज को उठाया है। ये बड़े अद्भुत स्थान है और ब्रजवासियों का धन्यवाद है लाख, कोई ले जाएगा कोई ये कुछ नष्ट करेगा तो क्या है, उनको वार्निश करके रखा है, कबड़ के अंदर बंद रखा है, रमेश बाबा जी महाराज की प्रेरणा से उसको अच्छी तरह से उसका कबड़ बना के उसको रखा है, क्योंकि आने वाली पीढ़ियाँ देखें कि देखो भगवान की लीला स्थली ऐसे कोई कपोल कल्पित नहीं है, वो उसके प्रमाण हैं, हम देख सकते हैं आके। कोई भी अगर हम जो लोगों को उल्लू बनाने का है तो कोई कारपेंटर ऐसा बना नहीं सकता है, आप उसको 1 करोड़ रुपया दो ऐसा नहीं बना सकता वो। और ये आप साइंटिफिकली भी उसका स्टडी कर सकते हो कि ये पेड़ था पहले कि ऐसे लकड़ी बना के रखा है, तो कदम का पेड़ है वो, हर प्रकार से उसको प्रूव कर सकते हैं आप। तो ठाकुर जी की लीला हम सुनते हैं और दुर्भाग्य है कि कई लीलाएँ की स्थलियाँ लुप्त हो रही हैं, लेकिन कुछ स्थलियाँ अभी भी है और वो आपको प्रमाण देती है कि ये लीला हुई है, ये कोई माइथोलॉजी नहीं है। ये माइथोलॉजी का वर्ड है ना, ये ब्रिटिशों ने हमारे दिमाग में ठोस ठोस के भरा हुआ है, माइथोलॉजिकल साइंस, माइथोलॉजिकल स्टोरी, माइथोलॉजिकल लेक्चर, माइथोलॉजिकल क्लास, माइथोलॉजिकल लिटरेचर, ऐसा पूरा ठोस ठोस के ठोक ठोक के दिमाग में बिठाया है, दंत कथा बोलते हैं उसको, जानबूझ के उन्होंने किया है ताकि हम सबका हमारे धर्म के ऊपर विश्वास उड़ जाए, हमको नहीं ऐसा होना चाहिए, उनके प्रभाव से हमारी संस्कृति और हमारे धर्म और विचार को, लीलाओं को श्रद्धा के साथ हमको जतन करना चाहिए उसका। वी हैव टू प्रिजर्व देम एंड गिव टू आवर नेक्स्ट जनरेशन द फेथ, द कॉन्फिडेंस एंड द निष्ठा दैट वी आर सपोज टू हैव। तो इस तरह से मैं जब द्वारका में गया था ना, तो मैं सबको बताया कि जब भगवान जाम्बुवंत को पास गए थे ना समंतक मणि के चक्र में, तो जाम्बुवंत मणि लेने, सॉरी समंतक मणि लेने को जब गए थे तो कुछ द्वारका वासियों को ले साथ में लेके गए थे एज अ प्लान ओनली। और जब गुफा आई तो उनको कहा द्वारकावासियों को, आप पीछे रहो, पता नहीं गुफा के अंदर क्या है, अंधेरा, राक्षस, जानवर कोई होगा, आई विल गो। तो बाहर खड़ा किया और अंदर चले गए। तो अंदर जैसे ही मणि दिखा, मणि लिया बच्चे के हाथ से, तो तुरंत वो दाई चिल्लाई जोर से, है ना, सर्वेंट थी वो, तो वो आवाज़ सुन दे जामुन बाहर आ गए, देखा कोई परदेसी आदमी जो है ना वो क्रोध से आए एकदम, कौन मेरे बच्चे को तंग कर रहा है, तो क्रोध से आए तो भगवान को पहचान नहीं पाए क्रोध के कारण। तो भगवान का युद्ध शुरू किया उसने, चैलेंज किया भगवान को, और ना 28 दिन युद्ध किया भगवान के साथ, 28 days। तो 13 दिन तक तो उन्होंने इंतजार किया बाहर, बाद में लगा पता नहीं क्या हुआ अंदर, भगवान को खा गया कोई जानवर या कुछ राक्षस खा गया, उनका डर लगा उनको, तो वो निकल के द्वारका में गए और खबर सुनाया कि भगवान तो आए ही नहीं बाहर। तो ऐसा एक अफवाह फैल गई कि भगवान हरि बोल चले गए, सो बहुत दुखी हो गए सब लोग। तो नारद मुनि आ गए और नारद मुनि ने कहा कि आप ना वहाँ पर एक चंद्रभागा देवी का मंदिर है, अभी भी है वो, वहाँ जाके प्रार्थना करो, भागवत में उसका वर्णन आता है, 1 line इज है, 1 श्लोक का। तो सब द्वारकावासी जो है दुखी होकर, सभी जितने गए थे जितने नहीं गए सब लोग चंद्रभागा के मंदिर में गए, देवी के मंदिर में, और प्रार्थना किया। और जैसे ही प्रार्थना समाप्त हुआ उनका, वहाँ से भगवान जाम्बवती को लेकर आ गए। अभी ये सारा जो है ना ज्योग्राफिकली इज ऑल्सो यू कैन कनेक्ट, हम लोग उसी दिन जाम्बवती गुफा में गए थे, उसी चंद्रभागा मंदिर में आए, तुमने कहा देखो शास्त्र जो है ना वो सत्य है, ये सब लोकेशन आर ऑल कनेक्टेड। शास्त्र में वर्णन दिया है स्कंद पुराण में कि गोमती नदी जहाँ प्रकट हुई वहाँ समुद्र आ गया है और वहीं द्वारकाधीश का मंदिर है। तो आज भी आप देख सकते हैं गोमती नदी है, समुद्र मिलन हो रहा है, और उसमें लिखा है शास्त्र में कि वो चिन्हांकित चक्र चिन्हांकित शिलाएं प्राप्त होती है वहां पर, तो वो वहीं मिलती है और कहीं नहीं मिलती है। द शिलाज विथ चक्रज समटाइम्स हंड्रेड्स ऑफ देम ऑन वन शिला, समटाइम्स टू, समटाइम्स थ्री, वो सारे आप पढ़ेंगे तो आपको प्रमाण मिलेंगे, उसको ज्योग्राफिकल प्रमाण मिलेंगे। फिर वहाँ लिखा है कि वो समुद्र के पास जहाँ गोमती मिली, भगवान गोमती समुद्र को मिली, वहाँ पर चार नदियाँ प्रकट हो गई थी गोमती की ब्रांच के रूप में, और चार ऋषियों ने वहाँ पर उनमें स्नान किया था एक एक शाखा में, तो वो भी वहाँ पर है अभी कुआं के रूप में है। ऋषि का नाम लिखा है, नदी का नाम लिखा है, ऋषि का नाम लिखा है, नदी का नाम लिखा है, वो सब ज्योग्राफिकली अवेलेबल है वहाँ पर। अगर आपको श्रद्धा है तो आपको प्रमाण मिल सकता है, आपको मानना ही नहीं है तो फिर क्या कर सकते हैं उसके लिए। तो कहने का तात्पर्य यह है कि हमारा सारे स्थान जो है ना आप देख सकते हैं और देखकर अपनी श्रद्धा को बढ़ा सकते हैं, निष्ठा में रूपांतरित कर सकते हैं। यू कैन कन्वर्ट योर श्रद्धा इनटू निष्ठा जब देखेंगे। इसलिए हम लोग यहाँ पर आते हैं, दर्शन करते हैं, देखते हैं, सुनते हैं और आचमन करके उसका लाभ लेते हैं। तो ये क्षीर सागर है जिस पर भगवान निवास करते हैं, तो इसका और भी कनेक्शन है। जैसे भगवान ने सारे धामों को अपने धाम में आश्रय दिया है, तो क्षीर सागर को यहाँ आश्रय दिया है। विष्णु भगवान के रूप में आए तो क्षीर सागर यहाँ पर प्रकट हो गए और यहीं पर अभी भी विराजमान है। तो यहाँ पर जो जल है, तो उस मंदिर के पास जल था, इस मंदिर के पास में है, इस तरफ है, उस तरफ है, सारा क्षीर सागर ही है। जब पानी कम हो गया तो बीच में लोगों ने घर बांध लिया, लेकिन एक्चुअली वो एक क्षीर सागर है पूरा विशाल, जहाँ पर ये लोटस जो था कमल उसके बीच भगवान खड़े हैं। ये भी क्षीर सागर में आप बैठे हो क्योंकि कमल के ऊपर भगवान खड़े हैं, वो सारा क्षीर सागर है इसमें हम लोग बैठ कर कथा सुन रहे हैं। कितना भाग्य है हमारा, देखो आप सामने गिरिराज जी है, यहाँ क्षीर सागर है, यहाँ भगवान खड़े हैं। जय जय श्री राधे श्याम।